हमारे सामने एक समस्या तो है, ये जानते हुए भी पढ़ते हुए भी कि हमारा सारा का सारा जीवन प्रारब्ध के अधीन है, परंतु फिर भी विश्वास नहीं होता। जब कर्म क्षेत्र में उतरते हैं तो हर समय ऐसा ही लगता है कि मेरे करने से हो जाएगा, ये विश्वास हट जाता है कि सब कुछ प्रारब्धवश होगा। इसके बारे में तो महाजी से भी एक बार पूछा गया था, प्रेम ने कहा था महाराजी आप कहते हैं कि वास्तव में जीव करता नहीं है, लेकिन फिर भी करता नहीं होते हुए भी शरीर से कर्म तो हो रहे हैं, लेकिन जीव करता नहीं है लेकिन शरीर से कर्म हो रहे हैं, कर्मों के फल भी हो रहे हैं सुख रूप में या दुख रूप में, सक्सेस या फेलियर के रूप में। तो फिर भी जब कर्ता ही जीव नहीं है तो फिर कर्म फल का भोगता कैसे हो जाता है, प्रश्न तो ये था प्रेमी का महाराज जी के आगे। तो महाराज ने इतना ही कहा, प्रेमी ये बात तो ठीक है कि सब कुछ प्रारब्ध के अधीन हो रहा है, या यूं कहें कि ईश्वर हुक्म के अंतर्गत हो रहा है, परंतु जब तक तुम अपने आप को कर्ता समझ रहे हो तब तक तुम भोगता भी निश्चय ही हो। कर्ता ना होते हुए भी मैं अपने आप को कर्ता समझता हूं, जब कर्ता समझता हूं यानी कर्ता हूं तो भोगता भी हो गया। इसीलिए जो कुछ भी कर्म आपने किया है उसका परिणाम यदि सफलता के रूप में आपके सामने आता है तो आपको खुशी होगी, और विफलता के रूप में आता है तो आपको दुख होगा, और उस कर्म की प्लानिंग में भी आपको बेचैन रहोगे, उसके फल प्राप्ति में भी आप बेचैन रहोगे। ये बेचैनी आपको कभी भी छोड़ेगी नहीं जब तक आप अपने आप को कर्ता समझ रहे हो तब तक। इसीलिए वाणी तो साफ निर्णय दे रही है, सकल जगत का कर्ता जानो एक भगवान, आप अकर्ता हो रहो यही सार है। यह सारे जगत का कर्ता ईश्वर है, ईश्वर के हुक्म में सारा जगत चल रहा है, आपकी देह ही थोड़ी ना है कोई, आपके कर्म की सफलता में सूर्य भी शामिल है, पवन भी शामिल है, धरती भी शामिल है, लोग भी शामिल हैं, सारी प्रकृति आपके कर्म के फल देने में शामिल है, उसके बिना आपके कर्म ही नहीं हो सकते। जिन पदार्थों का आप यूज करते हो कर्म करने के लिए वो प्रकृति के, प्रकृति ने बनाए हैं तब यूज कर रहे हो ना आप उसको, और ईश्वर ने आपको कर्म करने की शक्ति दे रखी है तभी तो आप कर्म कर रहे हो। तो हर कर्म के पीछे कारणकर्ता ईश्वर ही है, यदि विशद विश्लेषण किया जाए तो इसी निर्णय तो पहुंचेंगे, लेकिन हमारी लिमिटेड बुद्धि है इसीलिए हम सब कुछ अपने को क्रेडिट दे देते हैं कि मैं ही करता हूं, तो इसलिए फल के भोगता भी आप ही। इसीलिए इसको भ्रम कहा गया है वाणी में, और संता विलास में जगह जगह ये बात आई है, कर्तापन मूल भ्रम है। और सबसे बड़ा भ्रम तो मुझको अपने बारे में है कर्तापन तो एक बहुत बारीक चीज है, लेकिन सबसे बड़ा भ्रम जिसका मैं आसानी से विश्लेषण कर सकता हूँ, मैं वो विश्लेषण भी करने के लिए तैयार नहीं होता, वो भी मैं सुन लेता हूँ केवल या पढ़ लेता हूँ। कई बार ये बात सत्संगों में समझाई जाती है कि भाई जीव वास्तव में देह नहीं है, कर्म क्योंकि शरीर से ही होते हैं और मैं अपने आप को देह समझता हूं। प्रैक्टिकली हर मनुष्य अपने आप को शरीर ही समझता है कि मैं शरीर हूं, ये मेरा रूप है, ये मेरा नाम है, ये मेरा साइज है, ये मेरा वेट है, सारा स्पेसिफिकेशन, सारी डिटेल्स आप शरीर की ही बताते हैं। आपका परिचय पूछा जाता है तो सारी डिटेल्स आप शरीर की बता देते, तो इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर हूं। इसमें आप किसी को सिखाओ चाहे ना सिखाओ, हर व्यक्ति जानता है कि मैं शरीर। लेकिन सत्पुरुष कहते हैं कि इसका एनालिसिस करके तो देखो, और वो एनालिसिस साइंटिफिक एनालिसिस नहीं होता, जो हमारी जीव विज्ञान जो बायोलॉजी एनालिसिस करती है, जो डॉक्टर्स एनालिसिस करते हैं, वो एनालिसिस नहीं है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। वो तो शरीर का ही एनालिसिस करते रहते हैं और ये जीव के बंधन का एनालिसिस कर रहे हैं। सत्पुरुष जो है जीव के बंधन का एनालिसिस कर रहे हैं, जीव की अज्ञानता का एनालिसिस कर रहे हैं। तो वो बड़ा स्पष्ट कहते हैं भाई ये देह, स्थूल देह जो आपको दिखाई पड़ रही है सॉलिड रूप में, ये इसी संसार के मटेरियल से तैयार हुई है, इसीलिए जब इसकी मृत्यु होती है, आप इसको जला देते हो या सड़ गल जाती है ये, तो इसी मिट्टी में मिल जाती है। जिस मटेरियल से आई है ये, उसी मटेरियल में ये एक हो जाती है। यदि इसमें वायु है तो वायु में मिल जाती है, जल है तो जल में मिल जाता है, पृथ्वी तत्व है सॉलिड तो पृथ्वी में मिल जाता है। तो जो कुछ भी है इसमें, इसमें आकाश है जो आकाश में मिल जाता है, अग्नि है तो अग्नि में मिल जाती है। तो पांच तत्व का पिंजरा ये, और इसी संसार में मिल जाता है, एक के साथ एक हो जाता है, और इसी मेटेरियल से ये तैयार हो। तो देह और संसार में कोई भेद नहीं। तो संसार को तो मैं कह देता हूं ये जड़ है, और देह को कभी मैं एक्सेप्ट नहीं करता कि ये जड़ है, इसको एक जिंदा वस्तु मानता हूं। तो देह एक जिंदा वस्तु है और संसार एक मृत वस्तु है। तो सत्पुरुष कहते हैं ये बात तो ठीक है कि देह में गति जब तक है तब तक तो इसको जिंदा समझता है, लेकिन वो कहते हैं गति तो संसार में भी है, पृथ्वी निरंतर घूम रही है, नहीं घूम रही है, 24 घंटे में एक चक्कर लगा लेती, चंद्रमा घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, हर चीज घूम रही है। एक यदि एटम का भी एनालिसिस करके देख लो तो वहां भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, वहां भी तीव्र गति, इलेक्ट्रॉन से कितनी तीव्र गति हो रही है। और महाजी कहते हैं प्रेमी हर चीज की मर्यादा उस ईश्वर सत्ता से ही कायम है। यदि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकुलर मूवमेंट स्पीड के साथ घूम रहे हैं तो इसका मतलब वो एक लिमिट में घूम रहे हैं, एक मर्यादा में घूम रहे हैं, एक लॉ के अंतर्गत घूम रहे हैं, और उसका नियंता मनुष्य नहीं है। मनुष्य ने किसी इलेक्ट्रॉन का निर्माण या एटम का निर्माण किया है, वो जैसा प्रकृति में उसने देखा खोज कर ली इसकी, लेकिन उसका सिद्धांत तो प्रकृति ने दिया ना। तो कहते हैं कि हर चीज यहां गतिशील है, तो गति का होना ही तो जीवन सिद्ध नहीं करता। लेकिन मैं गति को ही जीवन समझ लेता हूं। तो फिर जीवन में और गति में अंतर क्या है, ये तुम्हें समझना पड़ेगा। पृथ्वी को भी जड़, इस देह को भी जड़ क्यों कहते हैं? क्योंकि इन दोनों में ही, सारी प्रकृति में जिसमें सबके देह शामिल है, क्योंकि ये प्रकृति का ही अंश है केवल, इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कह सके कि मैं जानती हूं। इसमें कोई चीज ऐसी नहीं है पूरी प्रकृति में जो ये कह सके कि मैं जानती हूं। लेकिन मैं अपने बारे में पक्का कह सकता हूं कि मैं जानता हूं। तो इस जानने वाले को चेतन कहते हैं। तो ये सारा संसार और ये शरीर, ये जड़ और चेतन का कॉम्बिनेशन है। तो हमारी जड़ बुद्धि होने के कारण, जिसको हम अज्ञानता कहते हैं, मैंने जड़ को गलती से चेतन समझ लिया है। तो जड़ देह को मैं कहता हूं कि मैं जानता हूं। अब आप खुद सोच के देख लीजिए कि आपकी 24 घंटे की पोजीशन, जितनी देर आप जागते हो, यही रहती है नहीं रहती है कि मैं जानता हूं। और इस मैं का मतलब है देह, आप इसका मतलब देह से लेते हो कि मैं पूरा का पूरा हूं और मैं जानता हूं। तो अब बताइए, ये अभ्यास आपका जन्म से ही है और पिछले जितने भी जन्म हुए इसी अभ्यास के साथ हुए आपके, तो ये इतना गहरा संस्कार आपके अंदर बैठा हुआ है कि क्या ये आसानी से निकल सकता है? केवल एक सिद्धांत सुन लेने से या एक पढ़ लेने से, जो आपने हजारों वर्ष का अभ्यास पढ़ा हुआ है उसके संस्कार गहरे होंगे, या 10 बार आपने सुन ली कोई बात उसके संस्कार गहरे हो जाएंगे? इसीलिए ये संस्कार आपका टूटने का नाम ही नहीं लेता कि मैं देह हूं। और सारी जीव की दुर्दशा केवल इसी अज्ञानता के कारण है। जबकि हमारे यदि सामाजिक क्रियाकलाप भी देखे जाए तो हर जगह यदि आदमी विचार करे तो हर जगह यह बात सिद्ध हो जाती है कि जीव अलग है और देह अलग है। यदि सामाजिक क्रियाकलाप भी या सांसारिक क्रियाकलाप पर भी यदि हम विचार करें, जो हम रात दिन करते रहते हैं, ये बात बिल्कुल स्पष्ट सिद्ध हो जाती है कि जीव अलग है और देह अलग है। देह का नाश होता है, जीव का नाश नहीं होता, ये क्रियाकलाप से ही पता लग जाएगा। लेकिन हम उस पर चिंतन नहीं करते, सोचने की आदत ही नहीं। जैसे कि मान लिया हमारे सबके परिवार हैं, हम सबका जन्म हुआ या हमारे बच्चों का जन्म होता है, तो हर बच्चे की हम जन्म कुंडली बनवाते हैं, जन्म पत्री बनवाते हैं, ये सारे समाज में ये प्रचलित है, एक तरह से ये आवश्यक नियम बना हुआ है। और जन्म कुंडली में क्या देखते हैं, इसका भाग्य कैसा है, आगे चलकर ये क्या बनेगा, क्या जीवन में इसके दुख आएंगे, क्या इसके जीवन में सुख आएंगे। तो होशियार पंडित तलाश करते हैं, जो होशियार ज्योतिष तलाश करते हैं, जो सही सही जन्म कुंडली बनवा ले, कब इसकी शादी होगी, होगी भी या नहीं होगी, इसके बच्चे होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कैसे होंगे, सब जन्म कुंडली में हम लिखवाने की कोशिश करते हैं। पहले तो पंडित जब जन्म कुंडली बनाते थे, हमें याद है हमारे घर में भी जन्म कुंडली होती थी, तो एक रोल होता था कागज का, नहीं लंबा, पूरी जो है कम से कम जो है 10 मीटर लंबी वो जन्म कुंडली होती थी, सारी डिटेल्स उसमें लिखी होती थी। मुझको अपना जन्मदिन नहीं पता था और घर में किसी को भी नहीं पता था। एक दिन पिताजी मुझको ले गए ज्योतिष के पास, तो उन्होंने सब बताया कि कैसे कैसे क्या क्या था वो सब। तो उसने अपना पत्र सब पुराने निकाले, तो उसने मेरी जन्म तिथि निकाली 11 नवंबर 1946। लेकिन एक दिन आज से करीब 6-7 साल पहले मेरी वो जन्म कुंडली मिल गई, पुराने कागजों में मेरी जो ओरिजिनल जन्म कुंडली थी वो मिल गई। तो उसमें डेट निकली 12 नवंबर 1946, एक दिन का फर्क हो गया। तो खैर जन्म कुंडली मिल गई तो आजकल तो बड़ा आसान है कि कंप्यूटर में डालो सारा जो है आपका चिट्ठा निकल के बाहर आ जाएगा। तो मेरे अंदर एक इच्छा जागृत थी कि भाई जन्म कुंडली जन्म तिथि पता लग गई है, जन्म कुंडली मिल गई है, तो इसको देखें कि अब जीवन तो बीत चुका, 65-66 साल का जीवन तो निकल चुका, अब देखें जन्म कुंडली में लिखा क्या था और बीता क्या हमारे। तो देखा उसमें तो एक पैराग्राफ करीब 10 लाइन का वो कंप्यूटर में निकल के आया, तो मैंने देखा कि इसमें केवल आधी लाइन ऐसी थी जो मुझसे मैच नहीं कर रही, बाकी हर चीज मुझसे मैच कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि प्रारब्ध है और हम में से बहुत लोग जानते हैं जन्म कुंडली जो सही बनी होती है और ज्योतिष भी सही है बताने वाला, तो सही बता सकता है। लेकिन एक कंफ्यूजन में हम जब रहते हैं, वो भी हमसे पैसा ऐंठता है, अपनी दुकान चलाता है, कि भाई उपाय कर दो कोई ताकि जो होना है वो टल जाए, वो ना हो, कि हम तो चालाक लोग हैं ना, ईश्वर विश्वास तो है नहीं, हमें तो अपनी करनी पे विश्वास है। तो कुदरत के कानून को भी हम अपनी करनी से बदलना चाहते हैं। तो मेरे अंदर तो क्योंकि महाजी की तालीम पर चला था, महाजी तालीम पढ़ी थी, शास्त्रों के सारा स्वाध्याय किया था, और इस मामले में अंदर सिंसियरिटी भी थी, तो अंदर से मेरे तो निश्चय रहता था कि कर्म तो करने ही है, जैसा बुद्धि हमारी है जैसा समझती है वैसे ही तो कर्म करेंगे। लेकिन महाजी की एक बात बार बार जो पढ़ते थे कि कर्म फल को ईश्वर आज्ञा में देखो, हर जगह बात यह लिखी है कर्म फल को ईश्वर की आज्ञा में देखो। हम जहां खड़े हैं वहां यही बात ठीक है कि इतना तो हम कर सकते हैं भाई, कर्म करने से बाज नहीं आएंगे, हमारे बेचैनी हो जाएगी, हम प्रार्थ्याधीन कैसे अपने आप को समझते रहे हैं, सब जो परिस्थिति सामने आती है तुरंत ही कर्म करना पड़ता होता है, करना पड़ता है, करते हैं, तो कर्म करने को मना नहीं कर रहे, ये जरूर कहते हैं कर्म करते वक्त सोच समझ के कर्म करो, क्या करना उचित है क्या करना अनुचित है, इसकी गाइडेंस तो शास्त्रों में है, तो उस गाइडेंस के अनुसार हम कर्म करते हैं। तो कर्म करने की बात तो कह रहे हैं शास्त्र, लेकिन अगली बात जो कह रहे हैं कि उसमें जो फल मिलता है आपको उसको ईश्वर हुक्म में देखो, क्योंकि फल वही मिलेगा जो आपके प्रारब्ध में, सुख रूप में और दुख रूप में, उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए सफलता मिलने पर बड़ा अहंकार करते हो ना, देखो मैंने कैसा तीर मारा, कहां बिजनेस मैंने पहुंचा दिया, कितनी बड़ी पोस्ट पे आज बैठा हूं, ये मेरे पुरुषार्थ का फल है। बात तो आप ठीक कह रहे हो, आपकी बात में कोई गलती नहीं है, सामाजिक दृष्टि से ये बात आपकी 100% ठीक है, लेकिन बात जहां अध्यात्म की हो रही है, जहां ईश्वर की हो रही है, वहां तो वही कानून आपको सीखना पड़ेगा जो अटल कानून है, जिसको गीता भी कह रही है, जिसको महाजी भी कह रहे हैं, जिसको वेद भी कह रहे हैं। मतलब कि जब से मनुष्य इतिहास जानता है तब से ये बात सारे शास्त्रों में, सारे सत्पुरुषों ने बयान की, ये आज की नई बात तो है ना कोई। वाणी बड़ा स्पष्ट कर रही है, जो हो ना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाई। तिल मात्र भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते, इसका मतलब ये अटल कानून है। जब विचार करके देखो, जब फल निश्चय कह रहे हैं, वो ये तो कह रहे हैं आप कि आप जो कुछ भी सुख रूप में, दुख रूप में, सफलता के रूप में, विफलता के रूप में फल आपको मिल रहा है, उसको ईश्वर हुक्म में देखो। तो यदि थोड़ा सा भी विचार करो आप, तो इससे तो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाएगा, अरे जो फल हो रहा है वो कर्म का ही तो फल हो रहा है ना। जब फल निश्चित है तो कर्म कैसे अनिश्चित हो गया? अरे इधर तो आप मानने को तैयार हो कि फल में ईश्वर ज्ञान देखूंगा, अरे फल तो कर्म का ही हो रहा है ना। तो कर्म कैसे स्वतंत्र हो गया? इसका मतलब है सिद्धांत तो बिल्कुल ठीक है, जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा में, कर्म भी उसके हुक्म से हो रहा है, फल भी उसके हुक्म से हो रहा है। इसका मतलब हो गया कि मेरी सोच में ही कहीं गड़बड़ है, और सारी संतरदास में लिखा हुआ है कर्म करो, अच्छे कर्म करो, लिखा नहीं लिखा है, लेकिन प्रात का हुक्म मैं मानता हूं तो मैं कहता हूं अच्छे कर्म भी तो उसके हुक्म से ही होंगे। मैं भी पाप कर रहा हूं तो उसके हुक्म में ही तो कर रहा हूं, लेकिन पापी के अंदर यह भाव कभी नहीं आएगा कि मैं उसके हुक्म में पाप कर रहा हूं। पापी के अंदर यह बात कभी नहीं आ सकती मैं उसके हुक्म में पाप कर रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर तो कर्तापन बहुत ही स्ट्रांग होगा। सतोगुणी व्यक्ति के मनुष्य में तो ये बात अंदर से घूमती रहेगी इसके, जैसे कि दुर्योधन कह रहा है कृष्ण के सामने, जब महाभारत खत्म हो गया, मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है दुर्योधन, जांग उसकी टूटी पड़ी है, अब कृष्ण से कह रहा है कि मैंने ये जो कुछ भी किया, मुझे अंदर से पता था कि मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा देव बैठा था जो मुझे गलती करने को मजबूर कर रहा था, जानते हुए भी मैं ठीक नहीं कर सका, ये गलती ही करता रहा। और वो ये बात ठीक कह रहा है, कृष्ण ने ये बात खुद कही ना अर्जुन को, जब उसको सारा उन्होंने जो दिखाया कि ये जो कुछ भी युद्ध होना है ये पहले ही हो चुका है, तेरे चाहने से ना चाहने से कोई अंतर नहीं आने वाला है, तुझको भी युद्ध करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये रचना प्रारब्ध के अनुसार रची जा चुकी है। जब प्रारब्ध के अनुसार रची जा चुकी है तो युद्ध तो तभी हुआ ना जब दुर्योधन ने गलती की, यदि नहीं करता वो पांच गांव उनको दे देता कृष्ण के कहने से, तो युद्ध होता क्या? युद्ध नहीं होता, लेकिन जो रचना रची जा चुकी है युद्ध की, और कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ युद्ध हो, सारा दृश्य दिखा दिया, तो इसमें दुर्योधन की क्या गलती है? अब विचार करके देखो दुर्योधन की क्या गलती है इसमें? तो सारे दृश्य को यदि देखो आप, सरकार क्या भी इसका मतलब ये हो गया, सब कुछ प्रारब्ध के अधीन ही है तो मेरे विकास का तो कोई चांस ही नहीं। बस आप यही सोचो मेरे विकास का क्या चांस है, मैं पापी हूं तो पापी ही रहूंगा। लेकिन विकास होता है, हमने खुद देखा होगा कि जो लोग आश्रम नहीं आते थे उन्होंने आश्रम आना शुरू किया तो बड़ा उनका विकास हो गया, बड़े उनके ऐप छूट गए, किसी के ऐप नहीं भी छूटे। जिसने पुरुषार्थ किया उसके ऐप छूट भी गए। कोई तमोगुणी से रजोगुणी हो गया, कोई रजोगुणी से सतोगुणी हो गया, मतलब कि उसके उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में विकास हुआ। महाजीव कह रहे हैं तभी संगत का असर पड़ता है। जीव चाहे तो अपने चरित्र बदल भी सकता है। तो ये जो दोनों बातें आती हैं, हम परिवर्तन भी देखते हैं और उधर वो अपराध की बात भी सुनते हैं, तो मान लिया कंफ्यूजन हो जाता है कि पता है ये बात कहां तक ठीक है। तो जब तक मैं करता हूं, जब तक मेरे अंदर देह का अहंकार, देह का मोह बैठा हुआ है, ये भ्रम बैठा हुआ है कि मैं देह हूं, तब तक ये सारी बातें ठीक हैं कि तेरे करने से ही सब कुछ होगा। लेकिन जैसे जैसे तेरे अंदर ये ज्ञान गहरा उतरने, तेरी बुद्धि में बैठने लगेगा, जो तभी बैठ सकता है जब तू अध्यात्म मार्ग पे चलने वाला बनेगा, तभी बैठ सकता है, केवल पढ़ने से कभी नहीं बैठेगा। तो जैसे जैसे ये ज्ञान तेरे अंदर बैठने लगेगा, बुद्धि इस पर प्रैक्टिकल विश्वास करने लगेगी, वैसे ही वैसे तू खुद देखेगा कि तेरी आदत बन जाएगी कि गलती भी तेरे शरीर से हो जाए, अच्छे कर्म भी हो जाए, दोनों ही होंगे ना, किसी की सेवा भी हो सकती है और किसी को मैं दुख देने वाला भी बन सकता हूं। क्रोध आ गया, मार दिया झापड़ किसी के, दे दी चार गालियां उसको, तो पाप हो गया ना, दुख पहुंचाया मैंने किसी को। तो क्या करता है, पश्चाताप करता है, हे प्रभु गलती हो गई। सत्संग सुनता इसलिए पता लग गया ये तो तामसी विकार है, क्रोध तो एक तमस है, बुद्धि का अंधेरा है। तो फिर आगे से अलर्ट होता है कि मैंने क्रोध नहीं करना, कोशिश करता है क्रोध को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। तो पहले जो खुद पांच विकार में जल रहा था और इनका इनका दुख क्या है विकारों का, उसने जब सीखा तो इन विकारों को कम करने की कोशिश करता है। अब प्रारब्ध तेरे लिए थाली तो तेरे आगे 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 आगे, अब तेरी मर्जी है, तो उसमें से एक खा या चार खा, प्रारब्ध ने तुझको दे दिया फल रूप में है, तुझको वो भोजन दे दिया, अब तेरी मर्जी है उसमें से तू एक खाता है या चार खाता है, संयम करता है या लालच करता है। तूने सत्संग श्रवण कर लिया, शास्त्र पढ़ लिया, बारीकी से एनालिसिस सुन लिया सारा, अब तेरी मर्जी है, तू अपने आप को देह समझ या जीव समझ। मन में हम जितनी चीजें याद करते हैं उसका कोई कर्मफल नहीं होता। मन में आप किसी का कत्ल भी कर दो, जैसा कि स्वप्न में कर देते हो कई बार, उसका कोई फल होता है, क्योंकि वो मन की क्रिया है। महाजी कह रहे हैं प्रेमी जब तक निश्चय शक्ति काम नहीं करती, जिसको बुद्धि कहते हैं, बुद्धि का निर्णय साथ में जब तक इन्वॉल्व नहीं है तब तक उस कर्म का फल नहीं होगा। स्वप्न में जितने कर्म कर देते हैं कोई फल नहीं होता उसका, जागृत में कर्म कर दे तो फल होगा, फिर उसी पकड़ के ले जाइए। तो जागृत हालत में मेरी बुद्धि काम कर रही है, स्वप्न की हालत में मेरे केवल केवल संस्कार काम कर रहे हैं और वो मन को प्रेरित कर रहे हैं, उसके अनुसार स्वप्न की रचना हो रही है जिसका कोई फल नहीं है। जागृत हालत में वही कर्म करने के बाद मैं सजा का हकदार हो जाता हूं, नया कर्म बन जाता है, नए कर्म फल का हकदार हो जाता हूं। जैसे भी कर्म किया आपने, अच्छा किया तो अच्छा फल, बुरा किया तो दुख रूप फल। तो इसीलिए जो निर्णय है आपका, आपकी बुद्धि का, वो निर्णय आपको बदलना पड़ता है, वो निर्णय शास्त्र के अनुसार बनाना पड़ता है। तो शास्त्र की रचना किसके द्वारा हुई है? यदि यही कहते हम ईश्वर के द्वारा हुई है तो ये बात ठीक है, लेकिन हमको तो ईश्वर कोई रचना रचता हुआ नजर आता नहीं है, तो हम ये कहते हैं कि शास्त्र की रचना सत्पुरुष के द्वारा हुई है। सत्पुरुष ये बात कहते हैं कि इस देह के अंदर जो ईश्वर सत्ता है ये उसने लिखवाया है। जैसे महाराज जी की वाणी प्रकट होती थी, महाराज कहते प्रेमी ये बुद्धि का विचार नहीं है, ये सारा विचार उस स्रोत से आया है जिसको ईश्वर कहते हैं, ये ईश्वरीय वाणी है, इसलिए इसको अमर वाणी कहा जाता है, अमर लोक से वाणी आई। तो ये वाणी मेरी देह का, मेरे संसार का, मेरे जीवन का सारा राज खोल रही है। अब संता प्रकार ग्रंथ पढ़कर तो देखो, ओम अक्षर है अपर अपारा, जान ये रचिया सकल संसारा। ओम अक्षर अपरम महिमा है, वो अपार है, लिमिटलेस है, उसी ने ये सारे संसार की रचना की है और खुद इस सारे संसार में वो समाया हुआ। रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी। तो स्वामी रोम रोम में रमा हुआ है क्योंकि है ही वो जीवन रूप। यदि वो जीवन नहीं है तो एटम के अंदर न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर नहीं काट सकता, वो शक्ति वहीं से मिल रही है उसको। मेरी देह का हर सेल नया बन रहा है, पुराना मर रहा है, देह में निरंतर परिवर्तन हो रहे हैं, और एक एक सेल की क्या रचना है, डीएनए चेंज जरा पढ़कर तो देखो, एक सेल की कैसी अनंत रचना है। डॉक्टर भी साइंटिस्ट भी दंग रह जाते हैं, क्या माजरा है, आज तक इस शरीर की खोज नहीं कर सके, कितने युग बीते हैं, आज तक इस शरीर की खोज साइंटिस्ट डॉक्टर्स पूरी नहीं कर पाए और ना कभी कर सकते। कितने रोग संसार में फैले हुए हैं, आज तक इसकी गिनती नहीं कर पाए। आज भी मुश्किल से दुनिया में जो बीमारियां, उसकी मुश्किल से 10% बीमारी का इलाज होगा, डॉक्टर के पास 90% का इलाज ही नहीं, आज भी नहीं। तो ये सारी रचना जो रची जा रही है, जो मनुष्य नहीं रच रहा, ये सबको पता, ये मनुष्य की रचना नहीं है, ये प्रकृति की रचना है, और ये प्रकृति ईश्वर के अधीन है, ये प्रकृति ईश्वर के अधीन। तो बताइए, यदि मैं चिंतन करूं तो ये तो बात साधारण रूप में पता लग जाती है, मनुष्य की करनी बहुत कम है, और ईश्वर की करनी जिसको हम प्रकृति की रचना कई बार कह देते हैं, वो इसके मुकाबले में बहुत बड़ी। तो मैं छोटा सा मनुष्य कितना अहंकारी हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, ये मैं तभी कहता हूं जब इस प्रकृति चक्र को भुला देता हूं, और इस प्रकृति चक्र का जो मालिक ईश्वर है उसको भुला देता हूं, ये अहंकार मैं तभी कर सकता हूं। और यही संसारी लोग किया करते हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो साधारण प्रोफेसर हो, जो भी, उनको अपनी रचना का, मनुष्य की रचना का ही दिखाई पड़ता है, उनकी करनी दिखाई पड़ती है, इस प्रकृति की और उस ईश्वर की जो इसका मालिक है उसकी करनी कहीं दिखाई नहीं पड़ती। तो इसीलिए जब तक किसी सत्पुरुष पर आपका विश्वास ना टिके, सत्पुरुष को जब तक आप अपना गुरु ना बनाएं या जाने, तब तक इन चीजों पर कभी भी आपका विश्वास नहीं आ सकता। गुरु बनाने का मतलब ही यह होता है कि वो ईश्वर है, गुरु हमेशा जो रियल गुरु होगा वो कहेगा कि ईश्वर और गुरु एक है, वो सिखाएगा आपको। इसलिए महर्षि रमण ने साफ कहा कि गुरु केवल एक है, ये तो ऋषि की बात है ना, गुरु केवल एक है और वो परमेश्वर है। तो गुरु सत्ता है, गुरु शरीर नहीं है। इसलिए महाजी खुद कहते हैं प्रेमी ये खल्लड़ गुरु नहीं है, उस शरीर को खल्लड़ कहते थे, कहते तो कहते थे नहीं कहते थे, मैं इस बारे में क्यों नहीं सोचता। गुरु कह रहा है कि ये खल्लड़ गुरु नहीं है तो मैं क्यों नहीं सोचता गुरु कौन है फिर। वो चेतन सत्ता गुरु है, और चेतन का मतलब होता है जानने वाला, जिसमें कॉन्शियसनेस है, जिसमें होश है। मुझको पता है कि मैं जानता हूं, लेकिन मैं अपने आप को जानने वाला नहीं समझता, मैं अपने आप को देह समझता हूं, जड़ समझता हूं। तो जड़ तो कुछ जानती नहीं है, आपकी हड्डी जानती है कुछ ही, आपका मांस कुछ ही जानता है, आपकी आंख कुछ ही जानती है, आप जानते हो आपके द्वारा, आप आंख से देखते हो जानते हो, आंख नहीं जानती। तो शरीर तो जड़ है तो कुछ भी नहीं जानता, जानता हूं मैं। और इसीलिए ये शरीर मेरा तो है, मैं इसको मेरा तो कह सकता हूं, मैं इसका मालिक बना हुआ हूं, लेकिन मैं नहीं हो सकता शरीर। यह ठीक है शरीर मेरा है, आंख मेरी है, मन मेरा है, लेकिन मैं वो हूं जो मन के बारे में भी जानता है, जो तन के बारे में भी जानता है। तो मैं जानने वाला हूं, इसलिए मुझको चेतन कहा जाता है। इसीलिए रामायण आ रहा है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर भी जानने वाला है। अरे मैं जरा सी चीज मैं जानने वाला हूं तो ईश्वर जानने वाला नहीं है, ये सारा जगत उसकी देह है। जैसे मेरे शरीर की लीला हो रही है ऐसे सारे जगत की लीला हो रही है, नहीं हो रही है। मेरे शरीर से कर्म हो रहे हैं, सारे प्रकृति में जगत से कर्म हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। तो इसको ईश्वर की लीला कहा जाता है। देह के कर्म मेरी लीला है, जगत के कर्म ईश्वर की लीला। लेकिन सत्य यह है कि देह भी तो जगत के अंतर्गत ही है, इसलिए देह के कर्म भी ईश्वर की लीला है। यही तो सत्पुरुष कह रहे हैं। तो इस शरीर से जो कर्म है उसको उसका नाम उन्होंने प्रारब्ध लिख दिया, लीला ईश्वर की ही। मैं आपके सामने भाषण दे रहा हूं, प्रवचन कर रहा हूं, तो ये मेरा प्रारब्ध है या नहीं है विचार करके देखो। तो यदि होश में मैं हूं तब तो मुझे इस बात का पता है कि ये प्रारब्ध लीला है, ये रचना प्रभु की रची हुई है। जैसे तपोभूमि बनाई आपने तो नहीं बनाई, ये प्रभु की लीला है। तो यहां बैठे हुए हो आप, सदविचार सुन रहे हो, सत्संग सुन रहे हो, ये प्रभु की लीला नहीं है, ये भी तो प्रभु की लीला है। तो अच्छे से अच्छा कर्म भी वो प्रभु के हुक्म से हो रहा है, तू किस बात का अहंकार कर रहा है। ये होश बना रहना चाहिए, नहीं तो अच्छे कर्म का ये अहंकार हो जाएगा, मैं बड़ा अच्छा आज इंसान, फिर तू लोगों की शक्ल देखेगा मेरी ये तारीफ कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं मेरी बुराई तो नहीं कर रहा है, यही देखता रहेगा फिर। यदि ईश्वर की कर्मी तेरे ध्यान में दिमाग में आ गई तब तू निष्काम कर्म करने वाला बन जाए। अच्छे कर्म करके भी तेरे अंदर अहंकार पैदा नहीं हुआ, तो हर दृष्टि से हम यदि देखें तो यही बात सामने निकल के आएगी कि मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूं, भ्रम में पड़ जाता हूं, मैं ये भूल जाता हूं कि सत्पुरुष कह रहे हैं कि तू जो जो जीव है वो जानने वाला है, वो जानता है, और जिस के बारे में भी जानता है वो सब जड़ है। मन के मन अपने आप में जड़ है, शरीर अपने आप में जड़ है, प्रकृति इसके बारे में वो भी जड़ है, और जितने लोग हैं उनके शरीर भी जड़ है। तो जो कुछ भी जानता है सब जड़ है। इसीलिए जो जड़ है वो परिवर्तनशील है और नाशवान है। अब सब कुछ ये कहते हैं वो परिवर्तनशील है और नाशवान है। तो इस जड़ता के कारण, जड़ बुद्धि के कारण तू दुखी होता है, तू परेशान होता है, तू चिंतित होता है, तू बेचैन होता है। तो इस बेचैनी का इलाज इस जड़ संसार में मैं खोजता हूं, जहां है ही नहीं इसका इलाज। जो चेतन है, जो जड़ नहीं है, जो जड़ का मालिक है, उस चेतन में यह परिवर्तन ना परिवर्तन है ना वहां नाश है, वो अमर है। तो इसीलिए जीव को कहा जाता है तू गुरु धारण कर। गुरु कौन है? चेतन परमेश्वर है, चेतन परमेश्वर है। उसमें आनंद है, उसमें अमर जीवन है, उसमें मौत नहीं है, और वो दूर भी नहीं है। उसको चेतन सत्ता कहा जाता है। सत्ता कहते हैं एग्जिस्टेंस को, जो चीज एग्जिस्ट करती है, जो नष्ट नहीं होती। उसमें कॉन्शियसनेस भी, होश भी है, और वो सत्ता भी है। और जो वस्तुएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं? एग्जिस्टेंट बोलते हैं उसको। तो वस्तुएं हैं उसमें, लेकिन कब है वस्तुएं? जब वहां सत्ता मौजूद है। तो इसीलिए कहते हैं कि ईश्वर के बिना तो किसी वस्तु की सत्ता ही नहीं है। हर वस्तु की मर्यादा ईश्वर के कारण है, क्योंकि वो सत्ता है। वो ना हो तो कोई चीज एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। तो बताइए कि सारे जगत में, सारे ब्रह्मांड में केवल ईश्वर की सत्ता है, केवल ईश्वर ही है, और सब माया है। इसलिए इसको माया कहते हैं। जो है नहीं परंतु प्रतीत हो रही है उसको माया कहते हैं। और मैं कितना वहमी हूं, कितना पागल इंसान हूं मैं, कि ऐसे ईश्वर को मानने को तैयार नहीं हूं। अपनी करनी देख रहा हूं, मेरी करनी। सारे जगत की सत्ता जिसके कारण कायम है, तो करनी क्या उसे अलग हो जाएगी? तो प्रारब्ध मेरे शरीर का ही नहीं है, इस शरीर के साथ पूरे ब्रह्मांड का प्रारब्ध है, पूरे ब्रह्मांड का। ये शरीर और ये ब्रह्मांड उसके हुक्म से घूम रहा है। यहां ये जो वाणी है, जो एक दो है महाजी की वाणी का, ये शत प्रतिशत सत्य है कि जो होना सो हो रहा, प्रभु की आज्ञा माही, आगे पीछे ना कर सके, तिल भर तिस फरमाही। ये बिल्कुल 100% ट्रुथ है। इसलिए मैं यदि अपने कर्तापन को लेकर इसी प्रकार जीता रहूं, कर्म करता रहूं, तो फिर सारी जिंदगी मैंने परेशान ही रहना है। इस परेशानी का दुनिया में कोई अंत नहीं है। किसी को पावर ही नहीं दी गई है कि तेरी परेशानी का अंत कर सके। तू अपनी परेशानी का अंत खुद ही करेगा, और खुद कब करेगा? जब तू खुद को समझ लेगा। इसीलिए जब तक तू गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं करता, उसकी बात को सत्य नहीं समझता, और तू ये नहीं समझता जब तक कि मैं अपनी आदत का गुलाम हूं, आदत का आदत से मजबूर हूं, इसलिए ये ट्रुथ मेरे सामने है, तब भी मैं कितना अहंकारी हूं कि अपने आप को कर्ता समझ रहा हूं, अपने आप को नियंता समझ रहा हूं। इसीलिए समर्पण आपका गुरु वाक्य के आगे होता है, गुरु वचन के आगे होता है। ये ट्रुथ है, लेकिन ये ट्रुथ एज इट इज मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता, एज इट इज मैं इसको मान नहीं सकता। मानने का मतलब पालन इसके अनुसार में, कर्म इसके अनुसार नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है। लेकिन मैंने अपने स्वभाव को गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार बदलना है। तो इसलिए गुरु कह रहा है कि पहले तू अपनी खोटी करनी पर ध्यान दे, जो तुझसे पाप कर्म हो रहे हैं और तू समझ रहा है ये पाप कर्म है, सामाजिक दृष्टि में तो जानती है कि पाप क्या है पुण्य क्या है, तो सामाजिक दृष्टि के अनुसार मैं जानता हूं क्या गलत है। मैं किसी की जेब काट भले ही लूं, बड़ा होशियार हूं इसमें, लेकिन मुझे पता है ये गलत कर्म है, ये कभी भी मुझको जेल हो सकती है इससे कारण, जानता हूं मैं। तो महाराज कहते प्रेमी, जिसको तू जानता है गलत कर्म, पहले उसका तो त्याग कर दू, उसके लिए शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है तुझे। तो गुरु आज्ञा के अनुसार, शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार, जो गलत कर्म है समाज भी जानता है ये गलत है, पहले तू उस पर दृष्टि रख, उसको दूर करने की कोशिश कर, और जब तक तेरी देह से वो गलत कर्म हो रहे हैं तब तक तू गहरा पश्चाताप कर उसके ऊपर। हे प्रभु, सद्बुद्धि दो मुझको, शक्ति दो, ताकि दोबारा ऐसी गलती मैं रिपीट ना कर पाऊं। तो महाराज कहते हैं प्रेमी, जब तू कोशिश करता है इस तरह से, सोचता है, विचारता है, निश्चय को बदलने की कोशिश करता है, तो धीरे धीरे तेरे अंदर इनके संस्कार बनने लगते हैं। और जितना भी पांच नियम का महाराज जी ने प्रोग्राम दिया है, सादगी, सत्य, सेवा, सत्संग, सत्सिमरण का, तो जब इनको अपनाता है तो ये तेरे अंदर होश, ये कॉन्शियसनेस हमेशा बनी रहती है कि मेरा कल्याण केवल ईश्वर ही कर सकता है, मेरा अपना केवल ईश्वर है और वो मेरी देह में मौजूद है। तो बाहर तेरी देह से जो कर्म होते हैं वो तेरी आदत बन जाती है उनको ईश्वर हुक्म में देखने की, और तेरी जो कोशिश होती है, तेरी आदत बन जाती है उस कोशिश में अधिक से अधिक ईमानदारी से किसी को सुख पहुंचाने की, ठीक कर्म करने की कोशिश, और जो गलती हो जाती है उसके लिए तू गहरा पश्चाताप करता है, तो ये तेरे संस्कार अंदर के बदल जाते हैं। मौत तो तेरी कभी भी हो जाती है, शरीर का अंदर तो किसी वक्त भी हो सकता है, लेकिन संस्कार ऐसे बन चुके हैं तेरे अंदर कि तुझको अगले जन्म में अच्छा स्वभाव देते हैं, सतगुणी स्वभाव तेरा प्रबल होता है। इसलिए जीव का जो जीवन है वो निरंतर का जीवन है, बीच में ब्रेक नहीं है जीवन में। शरीर का जीवन क्षणिक है, अभी है कल को नहीं होगा, तो तेरा कर्म कंटिन्यूअस है, तेरे संसार का बनना बिगड़ना ये कंटिन्यूअस है। इस देह में और नई देह में एक सेकंड का भी टाइम गैप नहीं है, क्योंकि जीव का जीवन यानी मेरा जीवन कंटिन्यूअस है, और मुझको कोई दुनिया की ताकत सारी प्रकृति मिल जाए मुझको मार नहीं सकती, क्योंकि प्रकृति जड़ है मैं चेतन हूं, मुझे कैसे मार सकती। तो इसीलिए बार बार जब मैं शास्त्र के अनुसार अपना एनालिसिस करता हूं और मैं ये सीखता हूं कि तन से परे इंद्री विकार, इंद्री परे मन विस्तार, मन से परे बुद्ध ठहराई, बुद्धि परे रतन सुखदाई, जो सुखदाई रत्न है वो मैं हूं, इसलिए फाइनली मैं खुद ईश्वर ही हूं। लेकिन किस दिन ईश्वर हूं? जिस दिन मेरे अंदर से ये वहम निकल जाता है, ये भ्रम निकल जाता है कि मैं मन हूं, मैं इंद्रियां हूं, मैं देह हूं। देह तो सबसे ज्यादा स्थूल है, उससे सूक्ष्म इंद्रियां, उससे सूक्ष्म मन, और उससे भी सूक्ष्म प्राण होता है जो योग में पता लगता है, प्राण का आना जाना, वो प्राण भी मैंने, उससे भी सूक्ष्म प्राण को जानने वाला मैं। तो मैं सच्चित आनंद हूं। सत कहते हैं सत्ता को, एग्जिस्टेंस को, चित कहते हैं कॉन्शियसनेस को, होश को, चेतना को, और जहां सच्चित है वहां सृष्टि नहीं हो सकती। तो जब मेरी बुद्धि या जब मैं उस सत में स्थित होता हूं तो सारा संसार ये ब्रह्म रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जो है वही तो रहेगा। तो इसीलिए जहां द्वंद नहीं है, जहां द्वैत नहीं है, वहां केवल आनंद हुआ करता है। जहां द्वैत है वहां संघर्ष होगा, अच्छा है तो बुरा भी होगा, दिन है तो रात भी होगी, सूखा है तो गीला भी होगा, सुख है तो दुख भी होगा, द्वंद्व रूप प्रकृति है ना। और आनंद कहां होगा, जहां ये द्वंद्व नहीं होगा। तो इसलिए चेतन सत्ता में द्वंद्व है ही नहीं, इसलिए वो आनंद रूप, तो सच्चा आनंद है। तो अब बताइए, इस प्रकार से यदि मैं जैसे शास्त्र पढ़ता हूं, उसका एनालिसिस ही मैं साथ साथ करता रहूं, मेरी आदत बन जाए, तो आपकी बुद्धि होश में रहेगी नहीं रहेगी, मन के चंगुल में फंसोगे फिर आप, क्या गलतियां फिर भी हो सकती हैं आपसे, प्रारब्ध आपको मजबूर कर सकता है, लेकिन वो गलती होने पर आपके अंदर गहरा पश्चाताप होगा, ये अंतर होगा उसमें। अभी तो गलती करके खुश होते हो, मेरा काम हो गया, मैंने अपना उल्लू सीधा कर लिया, क्या मूर्ख बनाया किसी, कैसा खुश होता हूं, फिर गहरा पश्चाताप होगा, एक गलती भी मुझसे हो कैसे गई। तो ये जो अलर्टनेस है, ये संस्कार बनाएगी, वो संस्कार बनाएगी जो तुझको भविष्य में गलती से दूर रखेंगे। अगली देह जब प्राप्त होगी, ऐसा प्रारब्ध मिलेगा तुझको वहां पर, वहां तेरे तेरी देह से सत्कर्म होंगे, परोपकारी कर्म होंगे, ये प्रारब्ध ईश्वर तुझको देगा, क्योंकि तेरी सोच ऐसी थी, तेरे संस्कार ऐसे थे, तेरी करनी ऐसी। इसलिए ये हर देह में तू प्रगति कर सकता है, और इसी वास्ते ये मानव देह तुझको मिली गई है, इसमें होश है, पशु योनि में होश नहीं है आपको। कोई शास्त्र पढ़ सकता है पशु, ईश्वर के बारे में चिंतन कर सकता है पशु, केवल मनुष्य देह ऐसी है जो अपने स्वरूप के बारे में चिंतन कर सकता है कि मैं कौन हूं। तो मैं जीव हूं जो जानने वाली सत्ता है, और मेरे ऊपर प्रभाव मेरे ही मन का पड़ रहा है, मेरे ही इंद्रियों का पड़ रहा है, मेरे ही तन का पड़ रहा है, मेरे ही कर्मों का पड़ रहा है, तो मैं इनका सुधार क्यों ना करूं। तो धीरे धीरे सुधार यही है, असली सुधार यही है कि मैं तन से, इंद्रियों से, मन से मुक्त होने की कोशिश करूं। इसलिए मन के अंदर वासना पड़ रही है, इच्छाएं पड़ रही है। तो महाजी सतमार्ग का राह का प्रारंभ क्या बता रहे हैं, सादगी। अरे तूने इंद्रियों सुख भोगों से ही तो मुक्त होना है, सुख भोग के चक्कर में दुख तो ऑटोमेटिकली तेरे जीवन में आते हैं, क्योंकि संसार द्वंद्व रूप है। जितने सुख की लंबी प्लानिंग करेगा उतने ज्यादा दुख तूने पाल लिए, उसी वक्त बीज बो दिया दुख का। जो बड़े सुख की तूने कल्पना की और उसकी प्लानिंग की, साथ में तूने दुख की प्लानिंग कर ली, वो ऑटोमेटिकली हो गई। जैसे एक रुपया खरीद के लाए कहीं से, आपके हाथ में आ गया, तो हेड तो है तो टेल तो साथ में उसके। यदि सिक्का है, कोई कॉइन है, तो हेड जैसे है तो टेल तो होगी होगी इसमें। इसीलिए मैं कंफ्यूज हो जाता हूं, मैं सुख की प्लानिंग करता हूं, इस मूर्ख को यह पता नहीं। तू जितनी लंबी सुख की प्लानिंग करेगा, जितना बड़ा बनने की कोशिश करेगा, उतनी दुख की प्लानिंग तेरी ऑटोमेटिकली होगी और तू भोगता रहे। बड़ी ऊंची पढ़ाई करूंगा, अरे भैया बड़ी ऊंची पढ़ाई कर लेगा, बात समझ, उसने सुख की कल्पना कर रहा है ना बड़ी ऊंची पढ़ाई में, लेकिन कितना लंबा दुख झेलेगा तू पढ़ाई का, विचार करके तो देख ले। और जब ऊंची पोस्ट पे जाएगा, कितनी चिंता फिक्र होगी तुझे काम की, कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज तेरे को तो होंगी, तेरे ऊपर होंगी, विचार करके तो देख ले। तो हम एनालिसिस करना नहीं जानते, ख्वाब देखना जानते हैं। सत्पुरुष हमारी बुद्धि को होश में ला रहे हैं, तो हर चीज का एनालिसिस पेश कर रहे हैं। तो जब मैं उस शास्त्र के अनुसार पूरा सोचता हूं, तब मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लेता हूं, इस संसार में बेचैनी के अलावा कुछ मेरे हाथ आने वाला नहीं, ये जिंदगी निकल जाएगी और मैं इस अंधकार से मुक्त नहीं हो पाऊंगा कि मैं देह हूं। इसीलिए मैं जीव हूं, मैं प्योर चेतना हूं, और प्योर चेतना का नाम ही ईश्वर है। तो मैं अपने स्वरूप में स्थित क्यों ना हूं, अपने को जानने की कोशिश क्यों ना करूं, अपने आप में सुख ढूंढने की कोशिश क्यों ना करूं, क्योंकि जो सुख जो आनंद मेरे अंदर है वो तो जगत में है ही नहीं। इसलिए जो इंसान भी अंदर जाने की कोशिश करता है, ईश्वर भक्ति करने की कोशिश करता है, सिमरन करने की कोशिश करता है, वो अपने मूल घर की ओर वापस जा रहा है। और जो संसार में पैर फैलाने की कोशिश कर रहा है वो अपने घर से दूर यात्रा करने की कोशिश कर रहा है, उसको बेचैनी मिलेगी और जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी। इसीलिए जो शास्त्र के वचन हैं कि ये सारा संसार अपराध के अधीन है, इसको केवल विश्वास ना करें, करने भी इसके अनुसार करने की कोशिश करें। इसीलिए ये मसला कठिन जरूर है, क्योंकि विश्वास का बात है, अभी हमारे विश्वास नहीं है, लेकिन जब हम सतमार्ग पर चलते हैं ये विश्वास हमारे अंदर हर दिन हर वर्ष गहरा होता चला जाता है। और जैसे जैसे ये गहरा होता है, मेरे मन के ऊपर से जो बोझ है कर्म फल का वो उतरने लगता है। हर हालत में मैं ईश्वर हुक्म देखने वाला बन जाता हूं, तो उस हालत में जाके मुझे पता चलता है मेरे मन से सारा बोझ उतर चुका है। उस हालत में जब मैं सिमरन करने बैठता हूं तो देखता हूं बड़े प्रेम से सिमरन हो रहा है, क्योंकि संसार तो ईश्वर हुक्म में मैं देखने लगा हूं, मेरी आदत ही बन गई है कि यहां तो हर सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, ना मैं करता हूं ना उन लोग करता है। उसका प्रेशर उसके अंदर नहीं रहता, चिंता फिक्र नहीं रहती, जीवन उसने पहले ही सादा कर रखा है, रिक्वायरमेंट्स पहले ही कम कर ली है। तो इसीलिए ना रिक्वायरमेंट्स की चिंता रहती है ना कर्म फल की चिंता रहती है, प्रेम से प्रभु की याद करता है। लक्ष्य उसका संसार का सुख भोगना नहीं रहा, मालूम है ये सुख तो दुख रूप है, जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रूप, ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट, वो ये सोचता है। इसलिए प्रेम से ईश्वर की याद करता है, वो कहता है कि यही मेरा सर्वोच्च कर्म है और यही मुझको मंजिल तक ले जाएगा। इसीलिए प्रारंभ का नियम उसके लिए अमृत बन जाता है, सारा बोझ उसका उतार लेता है। तो ये जन्म जिस हालत में भी मिला है, अगला जन्म उसको इससे बेटर हालत में मिलता है और उसमें प्रभु भक्ति के पूरे मौके मिलते हैं, अपनी मंजिल तय करके अमर लोक की यात्रा करता है अमर। ओम ब्रह्म सत्य सर्व।